عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب نبی ایک سوچ، ایک جذبہ اور ایک مقصد لے کر آئے. وہ سوچ اور جذبہ یہ تھا کہ انسانیت کے دکھ درد کیسے دور ہو جائے اور لوگوں کی مشکلیں کیسے حل ہو جائیں اور لوگ اللہ پاک کی ذات کو پہچاننے والے کیسے بن جائیں، اور کوئی ایسا سلیقہ طریقہ، کوئی ایسا انداز ہو کہ وہ اللہ ہی سے مانگنے والے بن جائے، ان کا رابطہ اللہ سے ہو، ان کا تعلق اللہ سے ہو. جتنے بھی انسان آئے ہیں یہ ان کا کوئی وجود نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر انسان جتنے بھی آئیں گے ان کا پھر بھی کوئی وجود نہیں ہوگا، ختم ہو جائیں گے. تھوڑے عرصے کے لیے ایک وجود ملا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ایک وجود ملا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ایک وجود ملا ہے، اس کے بعد ختم ہو جانا ہے. مٹ جانا ہماری زندگی میں اصل ہے، باقی رہنا میرے اللہ کو حاصل ہے. لوگوں کی مشکلیں اور لوگوں کے مسئلے اور لوگوں کی پریشانیاں کیسے حل ہو جائیں اور کس طرح پریشانیاں دور ہو جائیں، یہ سارے انبیاء کرام نے یہ محنت کی، اور پھر تمام طبقات پہ محنت کی، ہر چھوٹے بڑے انسان پہ، بادشاہ غلام پہ، ہر شخص پہ یہ محنت کی کہ کسی طرح لوگوں کو اللہ سے مانگنے والا بنائیں اور اللہ کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل حل ہوں. عبقری نے یہ محنت شروع کی. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے یہ محنت عبقری نے شروع کی. سارے جتنی پچھلی ہستیاں تھیں وہ کرتے آ رہے تھے، یہ نہیں ہے کہ ان کے بعد میں نے ہی شروع کی، عبقری نے شروع کیا کہ کس طرح انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں اور ان کی مشکلیں دور ہو جائیں اور ان کی ناکامیاں ختم ہو جائیں، ان کے درد ختم ہوں اور ان کے مسائل کا حل ہو اور ان کی پریشانیاں دور ہوں. بہت ہی زیادہ اس پیغام کو پھیلایا گیا سال ہر سال سے. اس کا جو نتیجہ ملا وہ یہ ہوا کہ ایک انسانیت کا، لوگوں کا ایک ہجوم اور سیلاب اٹھا. اگر میں ہجوم اور سیلاب کہہ رہا ہوں، شاید میرے لفظ اضافہ نہیں کر رہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں ایک کی جگہ سو اور سو کی جگہ ہزار نہیں کہہ رہا. ہمارے میگزین کو پڑھنے والے، ہمارے سوشل میڈیا کو دیکھنے والے، درس سننے والے لوگ، آنے والے اور بہت زیادہ مخلوق تسبیح خانے سے محبت کرنے والی بہت ہی زیادہ حقیقتوں کے قریب دنیا پہنچے، اور لوگوں نے اس پیغام کو بہت ہی لیا، بہت ہی لیا، اور قدردانی سے لیا، ادب سے لیا، طلب سے لیا، اور سچے جذبے سے لیا. طلب سے، ادب سے، قدردانی سے اور سچے جذبے سے لیا. مجھے لوگوں کی ملاقاتیں بولتی ہیں، لوگوں کی ملاقاتیں بتاتی ہیں، مجھے لوگوں کے حالات بتاتے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح تسبیح خانے کی قدردانی کی اور کر رہے ہیں. نظام عالم میں ایک بات بہت اہم ہے، جس نے بھی قدر کی اسی نے پایا، اصول ہے. جس نے ادب کیا اسی نے پایا، اور جو بدگمانیوں وساوس میں مبتلا ہوا وہ خیر سے محروم ہوا، فیض سے محروم ہوا اور برکتوں سے محروم ہوا. جو بھی وساوس اور بدگمانی میں مبتلا ہوا और एक बात याद रखिएगा, जितनी भी अंबिया तशरीफ लाए, अहलिल बैत, सहाबा, औलिया, सब के लिए एक ऐसे फितने उठे जिन्होंने उनके पैगाम को झूठ साबित करने की आखिरी कोशिश की। फितने उठे, और अजब बात बताऊं, उन फितनों में बड़े बड़े लोग बह जाते हैं जो कहते थे हम अकीदतों, मोहब्बतों और इश्क के पहाड़, बड़े बड़े लोग बह जाते हैं उन फितनों में। फितने की तारीफ यह है कि इतना झूठ बोला जाए और इतना हकीकत को मस्क करके, स्याह करके पेश किया जाए, इतना हकीकत को कि लोग फितने को सच समझें और सच को झूठ समझें, यह फितने की तारीफ है। और मेरे आका का फरमान है, अलामात कयामत में फितने उठेंगे और बहुत ज्यादा उठेंगे। तमाम अंबिया कराम जितने भी तशरीफ लाए उनके खिलाफ फितने उठे, फितनों का साथ देने वाले भी और फितनों के खिलाफ सरगरम भी हमेशा वाजे हुए, किन लोगों ने फितनों का साथ दिया और कौन फितनों का हिस्सा बन गए खुद। ये सिलसिला क्यामत तक रहेगा, अंबिया के साथ, अहलुल बैत सहाबा के साथ, औलिया के साथ, और अगर कोई उनका खिदमत करने वाला उनका गुलाम है उसके साथ, ये क्यामत तक रहेगा, ये अजल से चला है। लेकिन मुझे खुशी होती है और राहत होती है कि लोग अदब से तस्बीखाने के पैगाम को ले रहे हैं, अजमत से ले रहे हैं और वकार से ले रहे हैं और शान और शौकत से ले रहे हैं। उसका जो फायदा हुआ ये हुआ, लोगों के काम बने, लोगों के मसले हल हुए, लोगों की मुश्किलें दूर हुईं, और लोगों के हाथ में तस्बीह और मुसल्ला आ गया, और लोग अल्लाह से मांगने वाले बन गए। मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले, कहते थे कि हमारे कोई पीर साहब थे, वो उसके बाद फिर हम कहते थे आप कहां जाएंगे, लेकिन जहां आए तो पता चला कि यहां तो कुछ नहीं लिया जाता और सब कुछ दिया जाता है, कुछ नहीं लिया जाता और सब कुछ दिया जाता है। अरे यहां आके पता चला हमें अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम दिया, और फिर अल्लाह ने अपनी जात से जुड़ने का मिजाज दिया। अब कि अभी मैं आज सुबह आया हूं, अबकरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, चौथी कॉन्फ्रेंस थी ये तुर्की में, पहली 2015 में थी, ये चौथी कॉन्फ्रेंस थी, और आइंदा साल का ऐलान वहां मशवरे से किया, आइंदा साल इंशाल्लाह 16 अप्रैल 2026 बरोज जुमेरात आइंदा साल, और 19 अप्रैल बरोज एतवार सुबह 11 बजे दुआ, अभी भी सुबह 11 बजे दुआ हुई थी। मुल्कों के मुल्क आए, मुल्कों के मुल्क आए, टूट के आए, जज्बे से आए, खुलूस से आए, बहुत ज्यादा लोग आए। एक एहसास हुआ कि लोगों में कितनी तलब है, लोगों में कितनी तड़प है। जो इससे पहले तीसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें होटल के कमरे खत्म हो गए थे, वो ऐलान मुख्तसर था, इस दफा ऐलान कुछ माह चला, 8 महीने चला, अब तो ऐलान 1 साल चलेगा इंशाल्लाह। बहुत लोगों में तलब देखी मैंने, यकीन जानिए, मैं आपको उनके तासुरात, मैं आपको उनके हालात, मैं आपको उनकी सच्ची कैफियात बताऊं तो दिल कहता था अल्लाह ये सच्चाई मुझे भी दे दे और ऐसा सच्चा मुझे भी बना दे। ऐसे ऐसे उनके सच्चे हालात, सच्ची कैफियात, और फिर जिंदगी के किन परेशानियों में वो डूबे हुए थे और किन हालात में डूबे हुए थे, किन परेशानियों में, किन हालात में, किसी को अबकरी का पैगाम कैसे मिला, किसी को कैसे मिला, किसी को ख्वाबों के जरिए मिला, किसी को रिसाले के जरिए, किसी को सोशल मीडिया के जरिए, किसी को किसी अपने अजीज प्यारे रिश्तेदार के जरिए। एक एहसास हुआ कि लोगों में कितना सच्चा जज्बा है और लोगों में कितनी सच्ची तलब है, यकीन जानिए। हम बार बार कॉन्फ्रेंस हॉल में कुर्सियों का इजाफा कर रहे थे, बार बार कुर्सियों का इजाफा कर रहे थे। मैंने शाम को कहा वहां के जिम्मेदारों को, मैंने कहा सुबह 50-60 कुर्सियां और लगवाइएगा, ख्याल कीजिएगा। और मेरी कोशिश रही, मैं सुबह से लेकर शाम तक आने वाले जितने भी रूहानी मुसाफिर थे उनके साथ रहूं। एक एक फर्द ने 12-12 से ज्यादा बार मुलाकात की, 10 दफा 8 दफा 9 दफा 4 दफा 3 दफा, इससे भी ज्यादा। मैंने इजाजत दी थी कि आप आने वाले हजरात जितनी बार मुलाकात करें, मैं आया ही सिर्फ आपके लिए हूं। अल्लाह के फजल से मैंने आपसे किसी किराए का और किसी चीज का मतालबा नहीं किया, मैं आपके लिए आया हूं। और लोग बहुत राजी गए, जाते हुए रो रहे थे, दिल नहीं चाहता जाने को। मां की मोहब्बत के बाद फिर ये मोहब्बत मिली, मां के खलूस के बाद फिर ये खलूस मिला। लोगों की आंखों में आंसू थे। लोग सारा दिन मेरा इंतजार करते थे, सारा दिन। मुझसे बेख्याली में एक गलती हुई, वहां होटल की लॉबी में हमारा 4 दिन हाल था, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, यह हमने कॉन्फ्रेंस हॉल बुक किया था। अभी भी वहां रमादा शिशली में होटल है, वहां हमने हॉल बुक कर लिया है, फ्री उसमें आना जाना एंट्री। तो वो हॉल के बाद फिर मैं मुस्तकिल बैठता था होटल की लॉबी में, लोग वहां बहुत आते थे। हुआ यह कि मैंने जाना था एक बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, ब्लू मास्क थी गालिबन उसमें नमाज, आया सोफिया शायद। तो मैंने कहा कि मेरे घर वाले भी साथ थे, तो वहां लोग बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने कहा आप बैठे मैं आ रहा हूं। कोई 2.5-3 घंटों के बाद जो आए वो बैठे हुए थे। मुझसे गलती हुई कि मैंने कह देता, वो समझ रहे हैं कि शायद फकीर अभी आएगा। मैं जो आया वो बैठे हुए, मैं आप बैठे हुए हैं, उन्हें हजरत आपने फरमाया था आप बैठे, मैं आ रहा। ऐसे सच्चे लोग, ऐसे मुखलिस लोग, हर बंदे में एक नई कहानी थी, नई कहानी थी। एक साहब कहने लगे कि मेरी बीवी को एक पीर है, वो हर वक्त ऑनलाइन पैसे लगवाता है, हर वक्त। अब इस चीज की धुनी देनी है, अब ये चीज जलानी है, अब ये चीज करनी है, अब ये चीज करनी है, हर वक्त ऑनलाइन पैसे लग रहे हैं, लग रहे हैं, लग रहे हैं, हर वक्त पैसे लग रहे हैं। वो कहने लगे जब से अबकरी मिला अब ऑनलाइन वजीफे लग रहे हैं, तस्मियां लग रही हैं, ऑनलाइन अल्लाह का नाम लग रहा है, और ऑनलाइन ऐसे एक करीम के करीमी है, एक रहमत है, और लोगों को मसनून आमाल, तस्बीहात, जिक्र, ये चीजें मिल गई। लोगों को वो मिला जो गुमान से बालातर, जो ख्याल से बालातर, जो सोचों से बालातर मिला। फिर वो एक ऐसी जगह रहते हैं जहां बज़ाहिर कलमा, नमाज, तस्बीह का कोई अमूमी रिवाज, ख्याल नहीं है, वो ऐसी जगह रहते हैं। अबकरी के सोशल मीडिया ने उन्हें ये चीजें आसानी से फरहम की, बिल्कुल आसानी से, और आप हजरात ने आसान आसान चीजें उन्हें दी, ऐसी चीजें नहीं दी जो बज़ाहिर नामुमकिन हो, बज़ाहिर नामुमकिन हो। ये आसान चीजें उन्हें अच्छी लगी और उससे बहुत ज्यादा خیریں ملیں، برکتیں ملیں اور ان کے مسائل حل ہوئے، مشکلیں دور ہوئیں۔ ایک صاحب نے اپنی بات سنائی کہ میری والدہ بوڑھی پچھلی کانفرنس میں آئی تھی، فوت ہو گئیں، بار بار خواب میں آ کے کہتی میں بہت خوش ہوں، حضرت صاحب کو میرے سلام کہیے گا۔ ایک بات میں نے بہت عرصہ پہلے بھی اور کئی بار کہی، تسبیح خانے سے نسبت کے بعد خاتمے ایمان پہ ہوتے ہیں، اصل مومن کا خاتمہ ہے اور اصل مومن کا آخر ہے، خاتمے ایمان پہ ہوتے ہیں تسبیح خانے کی نسبت کے بعد۔ اور یہ بات انہوں نے پورے جتنی کانفرنس تھی سب میں کھڑے ہو کے سنائی کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ حضرت صاحب کو میرے سلام کہے، میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ لوگوں نے اپنے تجربات بتائے، میں نے لوگوں سے پوچھے آپ کو کیا ملا، میں سن نہیں سکتا تھا، اس کی ایک وجہ ہے میری کوشش تھی میں زیادہ سے زیادہ ان کی سنوں، ان کے مسائل، ان کے مشکلات، ان کی پریشانیاں، ان کی الجھنیں، ورنہ ہر فرد اپنے واقعات بتا رہا تھا کہ مجھے یہ پایا، یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، اور ہر فرد سچے جذبے سے بتا رہا تھا، بہت خلوص سے بتا رہا تھا۔ ایک انوکھا ایک احساس ہوا ان چار دنوں میں، میں نے پورے 8 دن لوگوں کو وقت دیا۔ میں بدھ کی صبح پہنچا، بدھ کے پہنچا، بس بدھ کی شام سے میں نے لوگوں کو وقت دینا شروع کر دیا، بدھ کی دوپہر سے، شام سے، بدھ کا سارا دن وقت دیا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ مسلسل وقت دیا، ملاقاتیں، 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 پھر سوموار، پھر منگل، اور پھر کل بدھ۔ کل بیٹھے تھے تو اوپر کی 11ویں منزل میں زلزلہ آیا، عمارت ایسے جھولنے لگی، تو میں نے پھر اللہ سے کہا، میں کہا اگر اللہ آ گئی ہے تو بھاگنا کہاں، بیٹھا ہوا تھا، میں نہیں بھاگا، آ گئی ہے تو پھر خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ پھر آیا زلزلہ، پھر آیا، 4 زلزلے ہمارے ہوتے ہوئے آئے، ابھی سنا ہے کہ پھر آئے ہیں، 2 دن کی چھٹی ہو گئی ہے استنبول میں۔ دو دن کی چھٹی ہو گئی اور قیامت بھی ایسی اچانک زلزلہ آئے گا۔ قرآن نے قیامت کا نام زلزلہ بھی رکھا ہے، کون سی آیت ہے؟ ان زلزلہ تشاید سات شیئن عظیم، قیامت کو بھی اللہ نے زلزلہ کہا ہے کہ ایسے اچانک زلزلہ آئے گا، کوئی سنبھل نہیں پائے گا۔ یہ تو 4.6.7 کے آتا ہے، پتہ نہیں وہ 700 کا، 7000 کا، ہر چیز پس جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر اللہ نئی زندگی دے گا اور اٹھائے گا۔ یہ جو زلزلے حادثات کے آتے ہیں، پریشانیوں کے آتے ہیں، مشکلات کے آتے ہیں، انہیں صرف جو چیز روکتی ہے وہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی طاقت ہے۔ پھر بعض اوقات کالے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بغض، کینہ، نفرت ہوتی ہے، اور وہ کالی دنیا کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، اور پھر انسانوں میں کالے روگ شروع ہو جاتے ہیں، بیماریوں، تکلیفوں، دکھوں اور مصیبتوں کی شکل، کالے روگ شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا حل بھی کلام الہی میں ہے، ان کا حل بھی اللہ کے نام میں ہے، ان کا حل اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفوں کو دور کرنے میں ہے، اگر ہو سکتی ہیں تو وہ صرف کلام الہی ہے، اللہ کا نام ہے۔ مجھے خاتون نے بتایا کہ میں ٹرام میں سفر کر رہی تھی تو तो मैंने 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ी थी। कहा उसकी लगी ब्रेक, मेरा अचानक हाथ छूटा, हाथ छूट के मेरे पर्स पे गया तो किसी और औरत का हाथ मेरे पर्स में था। वो जो अचानक जाके उसके हाथ को लगा वो असल में मेरे पैसे निकाल रही थी। उसकी चीख निकली और यूं निकल गई और मैं 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ने की वजह से पर्स लूटने से बच गए। लोगों ने अमाल के ऐसे ऐसे फायदे बताए कॉन्फ्रेंस में, अकल दंग रह जाती थी कि लोगों का इतना सच्चा जज्बा और इतनी सच्ची कैफियत। और सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस की वो लोगों का कामिल यकीन था कि ये हम तस्बीखाने का अमल करेंगे और इस तस्बीखाने के अमल से हमारे ये काम बन जाएंगे, हमारी ये मुश्किल टल जाएगी, हमारी परेशानी दूर होगी। जिसको दूसरे लफ्जों में मैं एक लफ्ज कहूंगा, वादों पे यकीन, अल्लाह के वादे, उसके हबीब के वादे, ये कर लो ये होगा, अल्लाह ने वादे किए हैं और उसके हबीब ने वादे किए हैं। जो वादों पे यकीन करेगा तो अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, उनके वादे सच्चे, और जो यकीन के साथ चलेगा अल्लाह पाक उसको अता फरमाएगा। वादों पे यकीन, सच्चे वादों पे यकीन करके जो चलेगा, वादों पे यकीन। हर बंदा अपनी कैफियत बता रहा था, दिल के हालात बता रहा था। कहा कि एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा आया कि मेरे पास नींद की गोलियां और नींद के टीके अमल करना, असर करना छोड़ गए। परेशानी इतनी ज्यादा थी, असर करना छोड़ गए, परेशानी इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी। और कहा कि फिर अबकरी के वजीफे काम आए और अबकरी के वजीफों ने जिंदगी में सुकून और चैन अता किया। अबकरी के वजीफ और जिंदगी में खैरें और रंग भर दिए। एक खातून ने कहा कि मैं पिछली कॉन्फ्रेंस में आई थी, 2 साल मैंने पैसे जमा किए, बूढ़ी खातून थी, 2 साल मैंने पैसे जमा किए किराए के, टिकट के, होटल के, और 2 साल पैसे जमा करके फिर आई मैं। सोचें उसका क्या जज्बा होगा, उसकी क्या तलब होगी। एक साहब मुझे वहां के मिले, क्योंकि पूरी इस वक्त यूरोप में, पूरे वेस्ट में जो कानून है वो सारा कानून उमर ला है, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो का कानून है, जो हज़रत उमर ने बनाया था आज से 1400 साल पहले। पूरी दुनिया में वही चल रहा है। जितने भी अंग्रेजों के मुल्क हैं जिसको हम मगरब या वेस्ट कहते हैं, उनमें सब में उमर ला चल रहा है, उमर ला चल रहा है। उमर रजी अल्लाह तआला ने बेजुबानों के भी हकूक मेरे हुजूर ने बयान फरमाए, हज़रत उमर ने उनकी तजदीद फरमाई कि बेजुबानों के हकूक। कह लगे हमारे घर में एक फाख्ता का बच्चा आ गया, हमने इदारे को फोन किया कि हमारे घर में बच्चा आया, तो उन्होंने कहा आपके घर में कोई जूती का डब्बा होगा, उसको सुराख करके इनको ढांक के रखें, कोई नुकसान ना पहुंचे, हम अभी आ रहे हैं। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी आई, फाख्ता का बच्चा ले गई, और कुछ दिनों के बाद लेटर आया, खत आया कि उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया अदा किया। कहा कि हमारे बच्चों को बाकायदा एक तरबियत दी जाती है हफ्ते में कि सड़क पार कैसे करनी है और दूसरों का ख्याल कैसे करना है, सड़क पार कैसे करनी है और दूसरों का ख्याल कैसे करना है। ये सारा उमर ला है, गैर मुस्लिमों के हकूक उमर ला का हिस्सा है, गैर मुस्लिमों के हकूक उमर ला का हिस्सा है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गैर मुस्लिमों के हकूक, फिर गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों के हकूक बयान किए कि गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें जो हैं उनके क्या हकूक हैं, उनके क्या हकूक हैं। एक साहब ने मुझे बताया, कहने लगे कि वो हैदराबाद दक्कन से तशरीफ लाए अपने पूरे घराने के साथ, फैमिली के साथ, सात आठ अफराद थे। कहने लगे वहां मद्रास में एक म्यूजियम है थोड़ा सा, वो बिक रहा है 50 करोड़ रुपए में पुरानी चीजें, वो साहब देना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी उसमें अनोखी चीज है जो 50 करोड़ में देना चाह रहे हैं। कहा चूंकि मेरा शोभा यही है, मैं रियल स्टेट का काम करता हूं और पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त का, तो मैं गया वहां, एक ऐनक है 1818 की और ऐनक की मुझे तस्वीर भी दिखाई। कहा कि वो ऐनक पहन के, कोई खास पत्थर की बनी हुई ऐनक है, ऐनक पहन के मैं जो पुल पे खड़ा हुआ वो ऐनक कंक्रीट के आर पार देख लेती है। पुल पे खड़ा हुआ ना, तो पुल में मुझे सिर्फ सरिये के जाल नजर आ रहे थे, बाकी मैं पानी आर पार खड़ा देख रहा था। 1818 की बनी ही वो दो ऐनक हैं, मुझे ऐनक की तस्वीर भी दिखाई। अठारह सौ अठारह में आर पार नजर आ जाता था कंक्रीट की जितनी मोटी दीवार हो। मेरे हुजूर को यहां बैठे आंखों से अल्लाह अपने अमर से दिखा देते थे। गजवाए मूता में मैं गजवाए मूता की जगह पे गया तो मुझे वह मंजर याद आया। हा हा हजूर के मुंह बोले बेटे का नाम क्या था? जैद बिन हारसा। फरमाया अगर जैद शहीद हो जाए तो जाफिर बिन अबी तालिब, हज़रत अली करम अल्लाह वजल करीम के बड़े भाई, अगर ये शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाह, और फिर अगर वो शहीद हो जाए तो तुम चाहो जिसको अपना अमीर बना लेना। लोगों ने कह दिया कि अब ये शहीद होंगे, मेरे हुजूर ने फरमा दिया, मेरे हुजूर ने फरमा दिया ये शहीद होंगे। भाई इस बंदे को मोबाइल की लाइट बंद करो, इतनी बड़ी लाइटें चलती हैं लेकिन मोबाइल की आंख जाके आंखों में लगते हैं, और बार बार कहा है ना करें। हुजूर ने फरमा दिया, और बाज़ औक़ात कश्फ की नजर से, कश्फुल कुबूर होता है, कश्फुल कुबूर, और वो मैंने नफिल बताता हूं, दो रकात नमाज नफिल जिसकी हर रकात में सूरत फातिहा के बाद अल्लाह को मुत्तकासर पढ़ के चार रकात नफिल पढ़ के चार रकात, और सोते हुए एक तस्बीह दरूद पाक की। आप जिस मरहूम से चाहें, किसी शख्स से चाहें जो इस दुनिया से रुखसत हो गया है, उससे मुलाकात हो जाती है, या फिर अहले नजर कब्र पे बैठ के अल्लाह के नाम का मुराकबा करते हैं तो अल्लाह अपने नाम से वहां के पर्दे हटा देता है। ये बात कहते हैं कैसे मुमकिन है, अंग्रेज ने 1818 में वो ऐनक बनाई थी किसी खास पत्थर की जो कंक्रीट के आर पार नजर आ जाता है, वो कहते हैं बड़ी ईजाद है, वहां कहते हैं वाह वाह, यहां कहते हैं क्या क्या, ये कैसे मुमकिन है, कश्फुल कुबूर कैसे मुमकिन है। कैसे मुमकिन? हम रूहानियत की दुनिया को अपनी आंखों और अपनी नजरों से पहचानने की कोशिश करते हैं, साइंस की दुनिया को बिन माने पहचान लेते हैं, बिन देखे पहचान लेते हैं, बिन सोचे पहचान लेते हैं, बिन पढ़े पहचान लेते हैं। साइंस की दुनिया को जो कि अंग्रेज ने बनाया है और अल्लाह उसके हबीब का निजाम, उसको कहते हैं कैसे मुमकिन है? अपनी अकल से हम सोचने और परखने की कोशिश करते हैं, अपनी अकल से उसके अंदाजे भी लगाते हैं, तजर्बात भी करते हैं और फिर कहते हैं मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं हो सकता। सच पूछें, यकीन वाहिद ताकत है जो इंसान को जिंदगियों में रूहानियत का सफर तय कराती है। यकीन वाहिद ताकत है और बेयकीनी से इंसान यकीन की दुनिया खो देता है। बेयकीनी से इंसान के जज्बे खत्म हो जाते हैं। जो बंदा काली दुनिया में हो, काले जज्बों में हो, उसके सामने काले लोग हों, काले रोग हों, वो चार चीजें जमा कर ले, काले माश, काली मरच, हरमल और कलवंजी, काले दाने, काले दाने, हब्बत सौदा, अरबी में इसको काले दाने कहते हैं, हब्बत सौदा, ये चार चीजें जमा कर ले और चार चीजें जमा करके, चार चीजें जमा करके फिर इनके ऊपर पढ़े या लतीफो या वदूद। सारी कायनात में इस वक्त जो आप सांस ले रहे हैं उसके लुत्फ और करम में है, उसकी अता और शफकत में है। जलजले के झटके लगते हैं, इमारतें गिर जाती हैं इधर और उधर, एक अल्लाह बचा देता है। मैं कल एयरपोर्ट पे बैठा था, इस्तांबुल के एक बेंच पे बैठा था, लोहे की बेंच थी गोल। मैं जो उठने लगा ना, मैं नीचे होके उठा तो बेंच टेढ़ी हो गई और मैं मजीद नीचे की तरफ झुक गया। सामने एक सफाई वाली बूढ़ी खातून खड़ी थी, एकदम दिल पे हाथ रख के हाय कहा। उसने कहा शायद फिर जलजला आया है और जलजले ने आके मुझे गिराया है। तो मैंने कहा नहीं, इशारा किया, मैंने कहा बेंच टेढ़ी हुई है। जब जिंदगी में हालात और मुश्किलात का इतना खौफ हो और परेशानी हो, फिर एक लफ्ज है लतीफ और वदूद। लतीफ में भी चार हरूफ हैं, लाम, या, तोआ और फा, जिसको सादा जबान में कहते हैं लाम, ये, तोए और फे। और वदूद भी चार है, वाओ, दाल और फिर यही दो हरूफ, वाओ, दाल। जो दुनिया के किसी आखिरी मुश्किल और परेशानी में मुब्तला है वो ये अमल कर ले, इन चार चीजों को जमा करे, इसको थैली में डाले और थैली में डालकर फिर इस पे या लतीफो या वदू तो पढ़े। आज हम पढ़ेंगे जज्बे से, बस मुश्किलें यूं टल जाती हैं, परेशानियां यूं दूर हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं और काले चीजों को आग लगती है, काले लोगों को अल्लाह पाक नाकाम करते हैं और काली दुनिया खत्म हो जाती है। जब ये चार चीजें के ऊपर आप या लतीफो या वदूद पढ़ते हैं, ये दो वो अल्लाह के नाम हैं जो कुरान पाक में मौजूद हैं, लेकिन इन नामों की ताकत और तासीर हम नहीं जानते। आपकी चार सिमतें हैं, मशरक, मगरब, शुमाल और जनूब, चार सिमतें हैं और चारों सिमत में खतरात का खतरा है, कोई हादसा, कोई धोखा, कोई फरेब, कोई परेशानी, कोई किसी किस्म की ज्यादती चारों तरफ से हो सकती है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने एक तजर्बा किया, सुना कि आगे बैठे तो हादसे होते हैं, मैंने बस में आगे बैठना छोड़ दिया, पीछे बैठना शुरू कर दिया। एक दफा पीछे भी हादसा हो गया, बच गया। फिर सुना है कि दरमियान में बैठे तो बंदा हादसे से बच जाता है। कहने लगे एक दफा दरमियान में आके खुद गाड़ी लगी, एक गाड़ी दूसरी को, दरमियान में भी हादसा हो गया। अब सोचा कि कहां बैठूं, फिर ख्याल आया अपनी तरफ से हिफाजत जरूरी है, लेकिन अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दे के बैठूं। इसको फिर सुने गौर से, अपनी तरफ से हिफाजत जरूरी है, असबाब का अख्तियार करना, असबाब का इस्तेमाल करना जरूरी है, जरूरी है, लेकिन लेकिन असबाब के साथ, असबाब के साथ, असबाब का इस्तेमाल और असबाब के साथ, असबाब के साथ। हिफाजत का निजाम, अपने आप को अल्लाह की रहमत और हिफाजत में देना, यह बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक की अमान में अपने आप को दे देना, यह बहुत जरूरी है। वो ये हिफाजत वाले आमाल है। जिसके पास या लतीफ हो या वदूद हो है, या लतीफ हो, और वो कहता है कि कोई काला जादू, कोई काली चीजें, कोई काले रोग मुझ पे हमला कर रहे हैं, और काला जादू, काली चीजें, काले रोग मेरा नुकसान कर रहे हैं, कैसे मुमकिन है? या लतीफों या वदूदों के अंदर वो ताकत है, वो तासीर है, वो कमाल है। इसको सुने, समझें, कितने आमिल कामिल दुनिया में गुजरे हैं, मैंने उनके वाकयात पढ़े हैं कि उनके पास सिर्फ या लफ्ज लतीफ था या फिर ये दोनों चीजें लतीफ और वदूद था। कितने आमिल कामिल ऐसे हैं, उनकी मैंने तारीखें पढ़ी हैं, सुनी हैं, चंद देखे हैं, उनके पास यही लफ्ज था, यही हर्फ था। हमारे पास लफ्ज हैं, हर्फ हैं, यकीन की ताकत कमजोर है, यकीन का जज्बा कमजोर है। हर्फ हैं, लफ्ज हैं, यकीन की ताकत कमजोर है और यकीन का जज्बा कमजोर है, और इस यकीन की बेताकती और कमजोरी की वजह से हम अक्सर वो चीजें नहीं पा लेते जो हकीकत है। हमारा यकीन कमजोर है। वरना या लतीफ़ो या वदूद पढ़ते ही चारों सिमटें, मशरिक मगरिब शिमाल जनूब और ऊपर नीचे, इन सब से हिफाजत की छतरियां, हिफाजत का निजाम, नूर की दीवारें, रूह की दीवारें, रूहानियत की ताकतें और रूहानियत का कमाल शुरू हो जाता है। या लतीफ हो या वदूद, देखो ये QR कोड, ये बार कोड, ये तावीज हैं। बार कोड, QR कोड तावीज हैं। इन पे हमें अंधा यकीन है, अंधा एतमाद है और कामिल यकीन है इन तावीजों के ऊपर। और हम कहते हैं कि इन बार कोड को, QR कोड को बस यूं रखेंगे, एक दुनिया खुल जाती है मालूमात की, इल्म की। इससे कहीं ज्यादा अल्लाह के इन नामों में पोशीदा ताकतें हैं, इन नामों में पोशीदा कुवतें हैं, पोशीदा ताकतें हैं और पोशीदा कुवतें हैं अल्लाह के नामों में। जाग रहे, आए थे रूहानियत लेने और शैतानी चीजों ने नींद में घेर दिया, ताकि आया तो है झोलियां भर के ना जाए, ख्याल करना लुट ना जाए, ख्याल करें लुट ना जाए। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग ऊंग रहे हैं और मुझे उनके नुकसान पे दुख हो रहा है। अल्लाहु लतीफ़ुन बेइबादिही, बेइबादिही, मेरा अल्लाह कहते हैं मैं मेहरबान हूं अपने बंदों पे, आओ मेरे नाम को पढ़ के देखो और मेरे नाम को आजमा के देखो और मेरे नाम की तासीर पा के देखो। अल्लाहु लतीफ़ुन बेइबादिही। یرزق من یشاء بغیر بغیر حساب. یہ آیت کہاں ہے؟ آؤ آ کے پڑھ کے دیکھو اور میرے نام ودود کی تاثیر پا کے دیکھو. یاد رکھیں, اب ایک بات کہنے لگا ہوں, ذرا توجہ سے سنیے گا, ایک موتی دے رہا ہوں. زندگی گزارے جتنے بھی دن اس نے لکھے ہیں, سسک سسک کے نہ گزارے, تڑپ تڑپ کے نہ گزارے, بلک بلک کے نہ گزارے. ایسی زندگی جس کی کبھی چھاؤں ہی نہ ہو, جس کا کبھی سایہ ہی نہ ہو, جس میں کبھی راحت ہی نہ ہو. یہ جو کالی تھیلی کا عمل ہے, اس زندگی کے اس نظام کے لیے بہت بے مثال لاجواب نظام ہے. کالی تھیلی کا یہ عمل اس کے لیے بہت لاجواب عمل ہے, بہت بے مثال عمل ہے کالی تھیلی کا یہ عمل, بے مثال عمل ہے. آپ حضرات سارا سال انتظار کرتے ہیں یا لطیف و یا ودودوں کا, سارا سال انتظار کرتے ہیں. مجھے سارا سال اطلاعیں ملتی ہیں, لوگوں کے تجربے ملتے ہیں, لوگوں کے مشاہدے ملتے ہیں, لوگوں کی کمالات کی دنیا ملتی ہے سارا سال. اور یہ ملتا ہے, اور یہ ملتا ہے سارا سال کہ ہم نے یہ عمل کیا اور ہمارے گھر میں آگ لگی تھی, ہمارے گھر میں بیماریوں کی, دکھوں کی, تکلیفوں کی, نفرتوں کی آگ لگی تھی, ہمارے گھر میں آگ بجھ گئی. یہ کالی چیزوں, کالی چار کالی چیزیں کالی چیزوں کا توڑ ہے. یہ کال چار کالی چیزیں کالی چیزوں کا توڑ ہے. اور جب اس پہ ہم بیٹھ کے یا لطیف و یا ودود و پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر سو گنا بڑھ جاتی ہے, سو گنا بڑھ جاتی ہے, اس کی طاقت سو گنا بڑھ جاتی ہے, بہت زیادہ. جلتی آگ پہ پانی پڑ جاتا ہے, گھروں میں سکھ سکون, زندگیوں میں چین اور راحت آ جاتی ہے. یا لطیفوں یا ودودوں کی برکت سے. اور زندگی حیرت انگیز طور پہ بے مثال اور با کمال ہو جاتی, یا لطیف و یا ودودوں کی برکت سے. روزانہ بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھ لیں بس, یا گیارہ تسبیحاں پڑھ لیں, اول آخر تین بار درود پاک کے ساتھ, آپ کو جو بھی سہولت ہو, ایک تسبیح پڑھ لیں یا گیارہ تسبیحاں پڑھ لیں, آپ کو ایک دنیا ملے گی, ایک راحت کا, برکت کا, دولت کا, عزت کا نظام ملے گا, آپ کو احساس ہوگا. گھر لٹے ہوئے ہیں, گھروں کی زندگی چین لٹ گیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ گھروں میں اٹیچ بات نے سب کچھ ختم کیا ہے, مشکوک ریس نے ختم کیا ہے, مشکوک زندگی نے ختم کیا ہے, اور بھی کئی عوامل, اور بھی کئی وسا فیکٹرز, اور بھی کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے. تو اس کا حل یہ کالی تھیلی کا عمل ہے. اور کالی تھیلی کا یہ عمل ایک زندگی ہے, ایک نظام ہے, کالی تھیلی کا یہ عمل. جس وقت آپ یا لطیف و یا ودود و پڑھتے ہیں, اچانک ایک نور داخل ہوتا ہے آپ کے منہ میں, آپ کی آنکھوں میں, آپ کے دل میں, آپ کے روئیں روئیں میں, اور پھر وہ منتقل ہوتا ہے آپ کے گھر پہ, آپ کی جائیداد, کاروبار, آپ کی زندگی, ان سب میں وہ نور منتقل ہوتا ہے, وہ برکت منتقل ہوتی ہے, وہ رحمت منتقل ہوتی ہے. جب آپ کیا پڑھتے ہیں, یا لطیفوں, جب پڑھتے ہیں, ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جذبوں کے ساتھ, جب یہ چیز منتقل ہوتی ہے تو اندھیرا کالا ہوتا ہے, तो काली चीजों का इलाज नूर और रोशनी है। अंधेरा क्या होता है? काला होता है, और काली चीजों का इलाज नूर और रोशनी है। आपके यहां तस्बीह खाने के हाल में अंधेरा हो तो अंधेरे को लाठियां मारें, गालियां दें, बुरा भला कहें, धक्के दें, तो अंधेरा नहीं जाएगा। अब छोटी सी रोशनी ले आए, अंधेरा चला जाएगा, और छोटा सा नूर ले आए, अंधेरा चला जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। या लतीफो या वदूदो, एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा नूर है जो घरों से और जिंदगियों से अंधेरे खत्म कर देता है, उजाले लाता है। जो कहता है मेरे रिश्तों में बंदिश है, उसे कहें या लतीफो या वदूदो का यह अमल कर 11 जुमेरातों का, और पूरे जज्बों के साथ कर, पूरी तवज्जो के साथ कर, और पूरे ध्यान के साथ कर या लतीफो या वदूदो का यह अमल। और जो कहता है कि रिश्ते हो रहे हैं लेकिन शादियों में रुकावट है, उसे कहें यह अमल कर, यह अमल बहुत ताकतवर है, इस अमल की बहुत तासीर है। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, सदियों से आजमूदा है, सदियों से, मैं नहीं बता रहा, सदियों से आजमूदा है। और जो बंदा कहता है मेरा रिस्क बंधा हुआ है, मेरा रिस्क बंधा हुआ है, और रिस्क ऐसा है कि बस जिंदगी तंग हो गई है, उसे कहें ये खाली काली थैली का अमल कर, और अपने मकाम पे पूरी दुनिया जहां बैठी है एक कपड़े की छोटी सी काली थैली सी लें, और उसमें काले माश, हरमल, काली मरच और कलवंजे उसमें डाल लें, और इनको आपस में मिला लें, 50-50 ग्राम आपस में मिला लें, और मिलाकर फिर इनके ऊपर ये अमल करें जिसका आज हमारी पहली जुमेरात है, ये अमल करें, और फिर इसको चुटकी चुटकी अमल के बाद, जब जुमेरातें 11 जुमेरातों का अमल हो जाए, अमल के बाद फिर चुटकी चुटकी तवे पे डालें, चुटकी चुटकी तवे पे डालें, और तवे पे डालकर चुटकी चुटकी तवे पे डालें, और तवे पे डालकर इसको जलाएं, यूं यूं चीज जलती जाएगी, और यूं काली चीजें, काली दुनिया, काले लोग, काले रोग, ये चल जाएंगे। मेरा नहीं, सदियों का आजमूदा है। मैं तो इस अमल को लाया हूं इंसानियत के लिए कि लोग किसी तरह इनके मसाइल हल हों, मुश्किलें दूर हों, और माशाल्लाह अल्लाह की रहमत, करम और फजल से लोगों के मसाइल हल होते हैं, हुए हैं, दूर होते हैं, हुए हैं, और लोगों की परेशानियां और उलझनें। अगर मुझे और आपको या लतीफो या वदूदो का अंदाजा हो जाए फायदे का, इसकी तासीर का, इसकी बरकात का और कमालात का, तो मेरे ख्याल में खाना, सोना, पीना, जिंदगी की सारी जरूरियात हम भूल जाएं, हम भूल जाएं, और सिर्फ सारा दिन या लतीफो या वदूदो को पढ़ें। अगर इसकी हमें समझ आ जाए, इसकी समझ आ जाए, तो सब कुछ भूल जाए। कितने अल्लाह के वली ऐसे गुजरे हैं जिनकी जिंदगियों में या लतीफो या वदूदो की तासीर खुली, और फिर वो जिंदगी में सब कुछ भूल गए, हर चीज भूल गए, और उन्होंने जिंदगी में या लतीफ़ो या वदूदों से जिंदगी का चैन पाया, दुख दूर धोए, परेशानियां दूर हुई। फिर अल्लाह ने उन दरवेशों को जरिया बनाया और उनके जरिए से हम जैसे लोगों के मसले हल हो गए। ये कुरान पाक के दो हर्फ हैं, दो नाम हैं, इनमें बरकत है, इनमें खैर है, इनमें राहत है और इनमें आफियत है। ये वो मुबारक नाम है, या लतीफ़ो या वदूद। या वदूद व सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही इन्नका रहीमुल वदूद। ये वदूद और ये लतीफ, जितना इस वक्त हमें मिल रहा उसकी मेहरबानी से मिल रहा। एक गलती की थी बनी इसराइल ने, अल्लाह ने फरमाया था कि इस दिन शिकार ना करो, हफ्ते के दिन, फिर सप्ते कुरान कहता है, और बाकी सब दिन शिकार कर दो। अच्छा, वो असल में अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। होता यह था कि हफ्ते के दिन शिकार बहुत होता था अल्लाह ने आजमाइश के तौर पे, और बाकी दिनों में शिकार थोड़ा होता था। बस उन्होंने अल्लाह के इस हुक्म की नाफरमानी की, इस हुक्म की, और अल्लाह पाक ने फरमाया सब के सब बंदर हो जाओ, और वो सारे बंदर हो गए। मक्का मुकरमा से मदीना मुनवरा अगर जाएं सड़क के रास्ते, तो रास्ते में एक वादी आती है, उसमें बंदर ही बंदर सड़कों पे बैठे होते हैं। लोग उनको खाने पीने की चीजें देते हैं। बाज मुहक्किकीन ने, मुहद्दिसीन ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने कहा है कि ये वो बंदर है और उन्हीं की कौमों से चले आ रहे हैं। और बाज रिवायात में है कि तीन दिन जिंदा रहे और फिर मर गए, और अक्सर कहते हैं कि ये वही है आज भी। हमारी गलतियां कितनी हैं, सिर्फ लफ्ज़ लतीफ उसकी मेहरबानी की वजह से, उसकी मेहरबानी की वजह से, उसकी मेहरबानी की वजह से अल्लाह पाक ने हमारे काम बना दिए, रिस्क दे दिया, इज्जत दे दी, सेहत दे दी, बरकत दे दी। एक घूंट पानी पिया तो फिर वो निकल भी जाता है। हारून और रशीद के बाद हजरत बहलोल आए और पूछा कि हारून तेरी हुकूमत कितनी बड़ी। बर्रे आजमों के बर्रे आजम हुकूमत हारून और रशीद की मुल्तान तक हुकूमत थी। आपका बर्रे सगीर कहां कहां उनकी हुकूमत थी। कहा तेरी हुकूमत तो सिर्फ पानी का प्याला है, तो पी ले। सारी दुनिया में, सारी दुनिया में पानी का कतरा ना हो, और तू कहे मुझे पानी दे और उसको पानी मिले, एक शर्त पे कि अपनी हुकूमत दे दे, तेरी हुकूमत के बदले तुझे पानी मिलेगा। अपनी हुकूमत दे दे, तेरी हुकूमत के बदले तुझे पानी मिलेगा, अपनी हुकूमत दे दे। और सारी हुकूमतें कुछ ना कर सकें, आखिर तुझे एक पानी का प्याला तेरी हुकूमत के बदले में मिले, और फिर वो पानी का प्याला पीने के बाद तेरे मसाने में अटक जाए, और तू कहे कि आप कोई ऐसी ताकत हो ये पानी का प्याला मेरे मसाने से निकाल दे और ये किसी तरह निकल जाए। कहा तेरी हुकूमत तो एक पानी का प्याला है। जितना भी इस वक्त मुझे आपको मिल रहा, जितना भी हम पा रहे हैं, उसका लुत्फ और करम है, वो उसके नाम लतीफ की बरकत है और अता हुदूद की बरकत है। जितना भी इस वक्त हमें मिल रहा और जितना भी इस वक्त हम पा रहे हैं, ये उसके नाम की बरकत है, उसकी अता की बरकत है, जितना भी हमें मिल रहा है। और ये जितना भी हमें मिला है उसकी शान करीमी है, उसके करम की अंतहा है। जितना भी हमें मिला है, और फिर एक बात याद रखिएगा, कितने हादसात ऐसे जिंदगी में आते हैं, आपने एक लफ्ज कहा है, पता नहीं मैं बच कैसे गया, बाल बाल बचा, एक लफ्ज होता है, कहते हैं कोई दुआ काम आ गई, कहते हैं किसी का हाथ का दिया काम आ गया, कोई सदका खैरात काम आ गया, ये सारी चीजें जितनी भी आपके पास हैं, ये सारी चीजें ये बस उसकी शाने करीमी करम और अता और उसकी रहमत और बरकत की वजह से हैं, जितना भी आपको मिला है और जितना भी आपने पाया है उसकी शाने करीमी है, उसका फजल और करम है, उसकी मेहरबानी है। ये लतीफ वो लफ्ज है, वो इस्म है, वो हरफों का मजमुआ है, वो बरकत वाले नूरानी बोल है, ये लतीफ वो बरकत वाले नूरानी बोल हैं, लतीफ वो बरकत वाले रूहानी नूरानी बोल हैं। आप मुसलसल एक बात सोचें कि उनने एक गलती की थी, बंदर बना दिया था, लूत अलैहि सलाम की कौम ने एक गलती की, मैं डेड सी पे गया, उसका एक हिस्सा इसराइल में है, एक हिस्सा उर्दन में है, सामने उस बस्ती को उठाया, इतना ऊंचा ले गए कि पहले आसमान वालों ने इंसानों और जानवरों की आवाजें भी सुनी और वहीं से बस्ती को पलट दिया, और फिर ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई, और जो लोग बस्ती से बाहर गए हुए थे, पत्थर उनके लिए अटके रहे आसमानों में, रुके रहे, जब वो वहां आए तो पत्थरों की बारिश उन्हें हुई और उन्हें पीस के रख दिया। दूसरी कौमों में देखें, एक मैंने बंदरों की बताई जिसको वादी फारिया कहते हैं, एक मैंने ये डेड सी बहरे मैयत का बताया, मैं वहां गया। दूसरी कौमों में छोटी गलतियां बड़े अजाब, मेरे मदीने वाले के सदके, हजूर के सदके, अल्लाह पाक ने बख्शिश का निजाम, मगफरत का निजाम, अता का निजाम रखा है, और अल्लाह पाक ने अपनी रहमत का निजाम रखा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे बंदो तुम्हारे साथ सारी माफी ही माफी है, सारा करम ही करम है, मुझे आपको अल्लाह का नाम लतीफ मिला, या लतीफो या वदूदो ये नाम मिले, या लतीफो जब भी पढ़ते हैं, या वदूदो जब भी पढ़ते हैं, पल भर में अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, पल भर में अल्लाह का जलाल खत्म हो जाता है, और पल भर में अल्लाह की नाराजगी खत्म होती है, और जो अजाब के फैसले, जो बलाओं के फैसले, जो आफात के फैसले आसमानों से होने थे, वैसे पल भर में अल्लाह टाल देता है, यानी इंसान को पता ही नहीं चलता और कितने बड़े हादसे से वो बच जाता है, पता ही नहीं चलता। एक साहब मुझसे कहने लगे, सैलाब के पानी ने सड़क को, नीचे से पानी गुजर रहा था, ऊपर सिर्फ सड़क के पत्थर और सड़क की वो जो तारको लुक होती है वो तह खड़ी थी, नीचे रेला गुजर रहा था, और मेरी गाड़ी ऊपर से गुजर के आ गई, मुझे पता ना चला, आगे गया तो आगे सारे नाके लगे हुए थे, तो उन्होंने मुझे रोक लिया, कहां से आए? मैं सड़क से आया हूं। कैसे निकल आए? कह रहे, क्या मतलब, सड़क थी, मैं आ गया। उसने कहा, वो तो हमने मना किया था कि उस पर कोई 1 किलो वजन भी होगा तो सड़क नीचे बैठ जाएगी, और नीचे से सैलाब का रेला गुजर रहा है सड़क को चीर के, और सड़क तो ऊपर ऐसी खड़ी हुई है, कहा मुझे खबर नहीं, कहा फिर तेरे साथ कोई करम और करीमी है, तेरे साथ कोई या लतीफो या वदूदों का फैज है। सड़क ऊपर खड़ी है और नीचे से, और फिर यही एक और वाकया, मैंने एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनकी बेटी, उनके सारा खानदान, सिर्फ उनका, उनके घर के दो तीन अफराद बचे, गाड़ी में जा रहे थे, रात का वक्त था, सैलाब के रेले ने सड़क को काट दिया था, सैलाब के रेले ने सड़क को काट दिया था, उन्हें इल्म नहीं था, उनकी गाड़ी गिरी और वो सड़क के अंदर गिरी और बह गई। मुझे उन्होंने खुद बताया, उनके शौहर ने और बच्चों के वालिद ने, कि बड़े बड़े लोहे के पाइप लेके कश्तियों में बैठ के कई दिन तक नीचे मारते थे कि कोई पाइप जाके गाड़ी को लगे, और कई दिनों के बाद हमें गाड़ी मिली और गाड़ी में से लाशें मिले। एक वाक्य ये है, एक वाक्य वो है कि सड़क को नीचे से काट दिया था, कट गई सड़क और ये बंदा सड़क के पार हो गया। ये जो ला या लतीफ या वदूद है, हमारी जिंदगी में ऐसे कई हादसात आते हैं, ऐसे कई वाकयात आते हैं, ऐसी कई परेशानियां आती हैं, कई आती हैं। मैं दुबई की सड़क पे जा रहा था शारजा की तरफ, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो सामने देखा कि अचानक अचानक एक गाड़ी उलट गई और उलट के फिर उलट गई। तो मेरे साथ कुछ 3-4 हजरात बैठे थे, सब ने यही कहा कि यह बंदा नहीं बचेगा जिस अंदाज से हादसा हुआ, लेकिन वो बंदा बाहर निकल आया। ये या लतीफ हो या वदूद हो। मेरे एक दोस्त कहने लगे कि मैंने ये कैरी डब्बा नहीं होता बोलान, ये सुजुकी का, कहने लगे मैंने ये 10-12 हजार में खरीदा है। लेकिन वो कैसे है? कहने लगे इसमें बंदे आ रहे थे तो सारी गाड़ी ट्रक के नीचे, ट्राले के नीचे आ गई, बंदे पता नहीं कैसे बच गए, और गाड़ी जो उसने मुझे दिखाई ऐसे पिस गई थी। कहने लगे वो गाड़ी को बेच के बाद 10-12 हजार में चले गए, बंदे कैसे बच गए? ये है या लतीफ या वदूद। ए मौला, जो हिफाजत का निजाम हुआ तेरे लुत्फ करम से हुआ, तेरी अता, तेरी शफकत और तेरी मेहरबानी से हुआ, और जो मुझे रिस्क मिला, सेहत मिली, आज की सुबह फिर सांस लेने का मौका मिला, मैं सोया और मर गया और ना उठा, ये सब कुछ जो मिला है ये महज तेरी करीमी से हुआ है, तेरी शफकत से हुआ है और तेरी मेहरबानी से हुआ है, ये तेरे करम से हुआ है। ये या लतीफ या वदूद है। हम उसे अपनी काबिलियत समझते हैं, ठीक है, एहतियात की काबिलियत का मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये बस उसकी कबूलियत है, ये उसकी अता है, उसकी करीमी है, जो उसने इतना हम पे करम किया हुआ है और इतना हम पे फजल किया हुआ है। काली दुनिया बढ़ जाएगी, हसद, बुग्ज, कीना और बढ़ेगा, जितना ईमान आमाल की इस दुनिया हटती जाएगी, काली दुनिया बढ़ती जाएगी, काले लोग बढ़ते जाएंगे, हसद कीना बढ़ता जाएगा, ना दीदावार बढ़ते जाएंगे। जहां जाहिरी हिफाजत का हुक्म है वहां अनदेखी हिफाजत, फिर ये कलामे इलाही, फरमाने इलाही, अस्माए इलाही के जरिए है, और उन अस्माए इलाही में ये जो आज अमल शुरू हो रहा या लतीफ़ो या वदूदो का, जिसको हम इंशाल्लाह अभी जज्बे से पढ़ेंगे, ये उसका हल है, यही है। उसका हल यही है। जब इंसानियत परेशानियों में घिर जाए तो फिर कोई रास्ता चाहिए। मेरे आका के खिलाफ हर साजिश की, जादू की साजिश भी की, हत्ता के एक बंदा लाए जो नजरे बद दावे से और नजर लगाने वाला आयन, कि वो कहता था मेरी नजर दावे से लगती है और वाकई लगती थी, अब भी लगती है। अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी नजर लगती है और वो दावे से लगाते हैं, अब भी हैं, हैं आप। वो लाए दूर परे से, उसको बहुत सारा माल दिया, उसके साथ बहुत वादे किए कि हुजूर पे वो नजर लगाए और नौज बिल्ला खत्म कर दे, उसे वादे किए। और वो पूरी ताकत के साथ आया और पूरी तवानाई के साथ आया और पूरे जज्बे के साथ आया, पर मेरे ने अल्लाह के हबीब के साथ अल्लाह की खास हिफाजत थी। हजूर सिक्योरिटी गार्ड रखते थे, रात का लोग पहरे देते थे, दिन रात मेरे हजूर की सिक्योरिटी होती थी। पूरी तारीख में वाकयात हैं। आखिरकार मदीना मुनव्वरा के एक खेमे में हुजूर ने सर मुबारक बाहर निकाल के, जो हिफाजत के लिए सारी रात पहरा देते थे, सफर में साथ पहरा देते थे, उनसे फरमाया एक वही नाजिल हुई है, वल्लाहु यासिमुक मिनन नास, ए मेरे हबीब बस आपकी हिफाजत का हमने जाती खुद जिम्मा ले लिया, अब अपनी सिक्योरिटी हटा दें। जो बंदा परेशान हाल है वो ये काली थैली का अमल जरूर करे। क्यों? अल्लाह गैब से उसकी अपनी हिफाजत का निजाम, खास तौर पे जादू के लिए, खास तौर पे जिन्नात शयातीन के लिए, खास तौर पे जले हुए और तड़पते हुए घर और जले हुए तड़पते हुए लोगों के लिए अल्लाह उसकी गैबी निजाम से हिफाजत का अनोखा निजाम करते हैं। गैब से हिफाजत का अनोखा निजाम करते हैं। जो ये फैसला कर ले कि मैंने ये काली थैली का अमल 11 जुमेरातें करना है इंशाल्लाह कहें, और दूसरा फैसला कर ले कि काली थैली के अमल में मैंने या लतीफो या वदूदो पढ़ना है दो, और तीसरा फैसला कर ले कि मैंने घर में एक तस्बीह किसी भी वक्त अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ पढ़नी है, और हर हालत में पढ़ सकते हैं, बावजू पढ़ें तो अच्छी बात है वरना हर हालत में इजाजत है। जो ये फैसला कर लेना उसको जिंदगी का लुत्फ आएगा। लाहौर मोची दरवाजे में एक बंदा था, वो किताबें छाता था, उसका नाम, इदारे का नाम था लुत्फ जिंदगी, लुत्फ जिंदगी। फिर वो मैकलोड रोड में आए, फिर वो आखिर में मेरी बुढ़ापे में मुलाकात हुई थी टाउनशिप में, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां चौक में, इधर उनका घर था, उस जगह का नाम है पिंडी राजपुताना। वहां बुढ़ापे में मेरी आखिरी मुलाकात उनसे हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, वो दरवेश जो है उसके थे, फुलत के, तो मैंने उनसे पूछा आपने ये लुत्फ जिंदगी नाम कुतुब खाने का क्यों रखा? कहा मैं बहुत परेशान था जब मैंने हिजरत की थी, हमारे खानदान में गुर्बत थी, एक दरवेश ने हमें अल्लाह का नाम दिया, हमने कलाम इलाही से तासीर हासिल की और अल्लाह के नाम की तासीर और ताकत और बरकत ऐसी मिली कि जिंदगी में लुत्फ आ गया और जिंदगी में चैन आ गया और जिंदगी में सरूर आ गया और जिंदगी में सुकून आ गया और जिंदगी जीने के काबिल हो गई और जिंदगी सर उठाकर चलने के काबिल हो गई, तो फिर मैंने अपने इदारे का नाम रख दिया लुत्फ जिंदगी। बाबा जी ने मुझे बताया, बहुत पुरानी बात है, उस वक्त वायन बुढ़ापे में थे, बहुत पुरानी बात, या लतीफ हो या वदूदो, ये लुत्फ जिंदगी है। लुत्फ जिंदगी जो कहता है कि काली दुनिया मेरे इर्द गिर्द है और मेरे घर में, रिस्क में, कारोबार में, मेरी जिंदगी में, जो कहते हैं काले लोगों ने मेरा जीना दो भर कर दिया है, और को कहते हैं काले रोगों ने मुझे जिंदगी में परेशान यूं कर दिया कि दुख दर्द अवलड़े गल पैगिन, हिक मुक देनी बेवल पैगिन। फिर सुने, दुख दर्द अवलड़े गल पैगिन, उल्टे सीधे दुख मेरे गले पड़ गए, दुख दर्द अवलड़े गल पैगिन, हिक मुक देनी बेवल पैगिन। एक खत्म नहीं होते, दूसरे शुरू हो जाते हैं। एक खत्म नहीं होते, दूसरे शुरू हो जाते हैं। अगर जिंदगी ऐसी है तो फिर उन बाबा जी ने अपने इदारे का नाम लुत्फ जिंदगी सही रखा था। तो कहते हैं मेरी जिंदगी में लुत्फ आ गया, चैन आ गया, सुकून आ गया, मेरी जिंदगी राहत कदा बन गई। तो मेरा मशवरा यह है कि ये काली थैली का अमल बहुत एहतमाम से करें और बहुत जज्बे से करें। ये तस्बीह खाने का ये निजाम इंसानियत को बहुत नफा दे रहा है, लोगों को बहुत खैर पहुंचा रहा है, और इससे बड़ी बरकतों के दरवाजे खुल रहे हैं। असल में अल्लाह पाक ना अपने नाम की अजमत को पसंद करते हैं, तो लतीफ और वदूद में उसके नाम की अजमत है, उसकी तारीफ है, उसकी खुशामत है। जितना अल्लाह की तारीफ और मिन्नत और खुशामत, तीन चीजें सुन ले मेरे साथ, गिने, तारीफ, मिन्नत और खुशामत, तारीफ, मिन्नत, खुशामत, ये जितनी करेंगे ना, अल्लाह पाक को ये चीज उतना ज्यादा पसंद है। तारीफ, मिन्नत और खुशामत बंदे को अच्छी लगती है, तारीफ, मिन्नत और खुशामत जानवर को अच्छी लगती है, जानवर को अच्छी लगती है। तो मेरा रब जो कायनात का वारिस है, जो कायनात का वारिस है, मौला और मलजा है, उसको तारीफ कैसे अच्छी ना लगेगी। ये राज हजरत अली को समझ आ गया था, हाँ आ गया था। उन्होंने अपने खादिम हजरत कुमैल बिन जियाद को कुछ दुआ सिखाई थी, और उसमें सारी अल्लाह की मिन्नत, तारीफ और खुशामत है, और या लतीफो या वदूदों में भी अल्लाह की मिन्नत, तारीफ और खुशामत है। वो समझ आ गई थी उनको बस। तो फिर उन्होंने जिंदगी में पढ़ा, और इस दुआए हजरत अली में एक सबक है मेरे आपके लिए, गौर से सुनना, जरा समझना, गौर से सुनना और समझना। हाँ, वो क्या सबक है, वो मेरे लिए, आपके लिए, मेरे आपके लिए सबक है कि हजरत अली ने मुझे आपको किस हस्ती से मांगना सिखाया। वो कौन सी हस्ती है, अल्लाह, उससे मांगना सिखाया, उसकी मिन्नत सिखाई, उसकी खुशामत सिखाई, उसके सामने जारियां करना, मिन्नतें करना, ये सिखाया। अभी हम सुनेंगे हजरत अली की दुआ को, आज पहली और पूरी 11 जुमेरातें सुनेंगे, लेकिन पहले एक सबक इसको जरा जहन में रखें। हजरत अली ने इसके तर्जमे पे नजर रखिएगा, लफ्जों के तर्जमे पे नजर रखें, क्योंकि हम अरब नहीं हैं, अरब की बारीकियां नहीं समझते, अरब की बारीकियां नहीं समझते। तर्जमे पे नजर रखें, कि वो मिन्नत किसकी कर रहे हैं। और जिंदगी में यह सबक दिया है, क्यामत तक हज अली का नाम लेने वालों, उनसे मोहब्बत करने वालों, अगर कभी मुसीबत आए, कभी परेशानी आए, कभी दुख सताए, कभी गम सताए, तो मेरे सबक को याद रखना। मैंने इंसानियत को, और ये इतने ताकतवर अल्फाज हैं, रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसा इल्म का समंदर तो थे वो, और ये ऐसा इल्म का समंदर दिया है, हैरान हो जाता है इंसान कि उनने ये अल्फाज जमा कैसे किए थे। उन पे अल्फाज अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, जैसे कहते हैं अल्लाह अपने इल्म में से इल्म अता फरमाया, अल्लाह की तरफ से ये अल्फाज कैसे मिले थे, हैरत अंगेज तौर और बहुत बाकमाल अल्फाज है। आए तवज्जो से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, दिल की गहराइयों से सुनते हैं, और इससे पहले दरूद शिफा पढ़ते हैं जो तमाम रोगों, तमाम बीमारियों, तमाम तकलीफों और तमाम मुसीबतों और परेशानियों का हल है। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद बियादा दे कुल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद बियादा दे कुल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء مبارك وسلم۔ اب درود پاک پڑھ لیا، اب علی کی دعا کو بہت توجہ سے سنیں، دل کی گہرائیوں سے سنیں، اندر کے سچے جذبے سے سنیں، اور لفظوں کے ترجمے پہ، لفظوں پہ ڈوب جائیں، اور جب لفظ آئے نا الغوث الغوث، اس وقت اپنی منت مراد حاجت اس اللہ کے سامنے پیش کریں۔ جب لفظ الغوث آئے اللہ کے سامنے پیش کریں اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا علم، کیا عظمتیں، کیا برکتیں۔ یہ انگلی جو وہاں پھیری تھی آنکھوں میں پھیر دیں، اور یہی انگلی دل پہ پھیر دیں۔ نور ہی نور ہے، علم کی بارش ہے، اور اس کریم کی بارگاہ میں منتیں ہی درخواستیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آج کا پڑھا جتنا بھی ہے سنا، اس کا ثواب حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ رضوان اللہ کی روح کو ہدیہ کر دیں، ان کے ایام چل رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں، اور اللہ پاک کی مسلسل منت کر رہے ہیں، درخواست، اور انسانیت کو سکھا رہے ہیں کہ لوگوں جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ اور تکلیفیں اور ناکامیاں گھیر لیں، اور گھریلو الجھنیں پہاڑ بن جائیں، تو پھر یہ دعائیں ہیں، یہ حاجات ہیں، یہ منتیں ہیں، یہ درخواستیں ہیں۔ ایسے اپنی زندگی کو خوشیوں اور خوشحالیوں پہ لانا ہے، ایسی اپنی زندگی کو سکھ اور سکون میں لانا ہے، ایسی اپنی زندگیوں سے مسائل اور مشکلات حل کروانے ہیں۔ یہ زندگی دی ہے، یہ سبق دیا ہے، یہ زندگی دی ہے، یہ سبق دی ہے مجھے آپ کو، اور قیامت تک یہ سبق چلے گا، چلے گا۔ مانگنے والے، تڑپنے والے، اپنی حاجات اور اپنی پریشانیوں کا ازالہ کرانے والے اسی طرح پھر گڑ گڑائیں گے، اور پھر مانگیں گے، اور اللہ کے سامنے پھر آئیں۔ ہم بیٹھ کے یا لطیفوں یا ودودوں کا عمل کرتے ہیں، ہاں یہ عمل آخر میں کریں گے، ذکر خاص ہوگا، کچھ اعلانات ہیں ہم آخر میں کریں گے، لیکن اس کے کرنے سے پہلے مجھے پہلے اس کا طریقہ مجھ سے سمجھ لیں، اس کا طریقہ سمجھ لیں، اس کے کرنے سے پہلے طریقہ سمجھ لیں، ذکر خاص اور یہ چیزیں طریقہ سمجھ لیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، इनको बिठा दे भाई। एक बात बताऊं आपको, देखेंगे सुनेंगे, बोले सुनेंगे। दुआए हजरत अली में भी अल्लाह की शान और ताकत और तासीर और कमाल, या लतीफो या वदूदों में अल्लाह की अजमत ही मिन्नत और दरख्वास्त और जिक्र खास भी सारा का सारा अल्लाह की मिन्नत, अल्लाह की मिन्नत, अल्लाह की मिन्नत, अल्लाह की मिन्नत और दरख्वास्त। मालूम यह हुआ कि अगर हमारे मसाइल मुश्किलात परेशानियां और नाकामियां खत्म होंगी तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ यही है। हां, उसका सारा रास्ता यही है, मिन्नत और दरखास्त, मिन्नत और दरखास्त, सारा रास्ता यही है। और इन जुमेरातों में, इन जुमेरातों में हमारा जो जिक्र होगा, खास जिक्र होगा, वो या लतीफो या वदूदो का होगा। हम जरबे लगा के पढ़ के फिर थैली पे दम करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर थैली पे, फिर पढ़ेंगे। 11 जुमेरातों का यमल कर लें, देखें फिर होता क्या है, क्या होता क्या है, करके देखें तो सही भाई। एक क्यों कर रहे हैं ये बंदे, इनको किसने कहा ये बांटे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, इनका यकीन जाने। अगर या लतीफो या वदूदों की तासीर हमारे ऊपर खुल जाए ना, खुली नहीं है, मेरे ऊपर नहीं खुली, मैं आपको क्या खोलूं, वो मेरा इल्मी महदूद है, मेरा इल्मी मुख्तसर है, मुख्तसर सा इल्म है, आप पे क्या खोलूं। दुआ करें अल्लाह मुझे अपने इल्म में से इल्म दे, अपने हिल में से हिल दे, मेरे लिए भी, मेरी नस्लों के लिए भी, पूरी उम्मत के लिए भी। जिस पे खुल गया ये इल्म, फिर वो क्या करेगा, उसके अंदर बेचैनी उठेगी। एक मुल्क से, ये जो इंटरनेशनल अपकरी कॉन्फ्रेंस तुर्की में हुई है क्राउन प्लाजा होटल में, एक मुल्क से एक साहब मेरे पास बैठे थे, दाढ़ी सफेद हो गई थी, कहने लगे मेरे वालिद साहब तस्बीह करने वाले थे, जिक्र करने वाले थे, अल्लाह अल्लाह करने वाले थे, क्या आंखों में आंसू थे, आज तक मुझे साथ लेकर नहीं चले, बड़े गम की बात कही। फिर मैंने अपने बेटों को बोला, मैं किधर आओ बेटा, सुनो इस बंदे की बात, आज तक मुझे साथ लेकर नहीं चले। हां, अगर नमाज तस्बीह के लिए होता था तो मार पीट करके मुझे नमाज तस्बीह की तरफ, मस्जिद की तरफ ले जाते थे, मुझे अपना आज तक साथी नहीं बनाया। तो अबकरी मिला, फिर अबकरी ने आके मुझे बताया कि रहना कैसे है, जीना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसा है, तो अबकरी ने बताया, वालिद ने नहीं बताया। मुझे याद है हमारे यहां एक निहारी वाला होता था, उसकी निहारी बड़ी मशहूर थी, वो बेटों को गालियां देके बुलाता था। तो एक दफा वो दांतों के डॉक्टर थे साथ, अब उनका बेटा बैठता है, उसने कहा कि तू गालियां क्यों देता है बेटों को, क्यों बुलाता है गालियां देख। उन्होंने कहा ये बोली यही समझते हैं। उसने मोहब्बत कर, उसने कहा अगर मोहब्बत करूंगा सर पे चढ़ जाएंगे, इनको इनकी औकात पे रखूंगा। लेकिन नहीं, जवानी की कुछ तलखियां भी बर्दाश्त कर लेनी होती हैं। उसके आंखों में आंसू थे, उसका दिल रो रहा था, और वो कह रहा था कि वालिद ने सारी जिंदगी मुझे साथ नहीं लिया। बहुत नेक थे मेरे वालिद, बड़े अल्लाह वाले थे, दुआएं मरने वाले, लोगों का फिक्र करने वाले, लोगों को अल्लाह के नाम पे जोड़ने वाले थे, मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा। घर वालों को जोड़ना एक तरफ, लाख को जोड़ना एक तरफ होता है, क्यों, घर वालों के जोड़ने पे बड़ी मेहनत और बहुत ज्यादा नागवारियां बर्दाश्त 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 करनी पड़ती हैं, औलाद को, बीवी बच्चों को, शौहर को, भाई को, उनको साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल है। मुझे उस बंदे की दर्द भरी बातें कभी ना भूलेंगे, कभी ना भूलेंगे। एक महकमे का अफसर आया मेरे पास, किसी महकमे का, मेरी मिजाज में राजदारी रखने की कोशिश है, दावा नहीं, मुझे कहने लगा कि मैं जवान था और ये गलतियां कर बैठा। अब वालिद की जाके कब्र पे कहता हूं कि मेरे अब्बा आप तो जिंदगी गुजारे बैठे थे, आपने तो सुबह शाम उतार चढ़ाव और वो जो जवाल देखा था, अब मुझे रोक देते हैं, अब मुझे मना कर देते हैं, अब मुझे को नसीहत मोहब्बत प्यार से मुझे साथ लेके चलते हैं। मेरे वालिद ने मुझे मेरी जिंदगी में छोड़ दिया, मेरे वालिद ने मुझे मेरी जिंदगी में छोड़ दिया। बस कहते हैं अब्बा की कब्र पे जाके शिकवे करता हूं, वालिद की कब्र पे जाके शिकायतें करता हूं। वो तो औलाद और घर वालों को साथ के लेने के लेकर चलना एक तरफ, जितने भी अंबे आए उन सब से कम सिर्फ उनके रिश्तेदार उनके घर वाले करीब हुए, और एक तरफ पूरी इंसानियत। लेकिन सारे अंबे आने, सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा अजियत अपने घर वालों से सही, और मेहनत सबसे ज्यादा अपने घर वालों पे की। मुझे उनकी बेबसी की कैफियत याद है, चार दिन पहले की बात है। अबकरी ने सिखाया कि मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है, या रब तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, और मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। अबकरी ने सिखाया कि जिंदगी होती क्या है, इससे पहले तो कोई खबर ही नहीं थी, पता ही नहीं था। वालिद अपनी जिंदगी की इबादत और तस्बीहां लेके चला गया। आप हैरान होंगे, लोग हमें तस्बीहां, अब्बा जी के 5 सूरत, कुरान, जाय नमाज, स्टिक, हर चीज आके दे जाते हैं, हमारे वालिद पढ़ते थे। मैं याद है मुझे एक बंदा बहुत ज्यादा जिक्र करता था, उसके मैंने फोन किया, उस वक्त मोबाइल फोन नहीं आए थे, तो मैंने फोन किया पीटी सेल में, तो उन्होंने कहा होल्ड कीजिए मैं अपने वालिद साहब को बुलाता हूं। जोर से कहा अम्मी अब्बू के पीर साहब का फोन है। और जब वो फौत हुए उनके घर ताजियत करने गया, तो वो जो तस्बीह पढ़ते थे वो मैं साथ ले आया, उन्होंने तस्बीह भी उठा के दे दी। मेरी मिन्नत है अपनी नस्लों पे मेहनत करें, अपने घर वालों पे, अपनी ख्वातीन मर्दों औलाद अपने प्यारों अपने दोस्तों पे मेहनत करें। ये तो मेहनत मांगते हैं, वो तो प्यार से चलाना मांगते हैं, ऑर्डर से नहीं, मेहनत करें। बेबसी की कैफियत में फिर ऐसा होगा कि हम तन्हा रह जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे, हम तन्हा रह जाएंगे। फिर कब्रिस्तान में मैं गया तो बंदा खड़ा था, मुझे देखा तो मुझे कहते पढ़ेंगे, मैंने हाँ, मैं क्या दोगे, नहीं मैंने पूछा, मैंने कहा पढ़ दूं, मैंने पढ़ दे, क्या लोगे, मैं जो दिल चाहे दे देना, मैंने कब्र पे पढ़ दिया, तो उसने मुझे 50 रुपए दिया, आप साथ थे शायद, नहीं 50 रुपए दिया, मैंने कहा थोड़े हैं, कहने लगे यही है बस कबूल कर ले। किसकी कब्र है, वालिदैन की कब्र है, अम्मा अब्बा है। पढ़ नहीं सकता कि मां बाप को हदिया दे, मैंने कहा और दो, कहा नहीं, मैंने वो वापस किया और जेब में कुछ बड़े नोट थे दिखाए, मैंने कहा मेरे पास हैं, लेकिन मुझे तेरी बेबसी पे हमेशा हसरत रहेगी। मां बाप की कब्र पे हो, आते जाते से कहे पढ़ दे, आते जाते को क्या एहसास है। इसलिए फरमाया तेरा वालिद फौत हो, तेरी वालदा फौत हो, अगर तू जनाजा पढ़ाने के काबिल है तो तू जनाजा पढ़ा, तू जनाजा पढ़ा, जो दर्द तेरे अंदर है वो किसी में नहीं हो सकता। अपनी नस्लों का निजाम देखें, सोचें कि हमारी नस्लों का क्या बनेगा, अगर नस्लों का ना सोचा फिर अपनी तस्बीह अपना वजीफा करके फिर चले जाएंगे। اپنی تسبیح، اپنا وظیفہ، اور زندگی ختم ہو جائے گی. کہا کہ ہمارے دادا تھے جس طرح کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میرے دادا بھی ایسے پڑھتے تھے. مجھے صاحب کہنے لگے، ہم ایک ملک میں گئے تو انہوں نے کہا، اور مجھے ابھی ایک صاحب کہنے لگے اسی کانفرنس میں، ہم لفٹ میں جا رہے تھے، کہا ہماری نسلیں بھی ایسی کہیں گی کہ ہمارا دادا تھا وہ تسبیح نماز پڑھتا تھا. اپنی نسلوں کا فکر کریں، ساری انسانیت کا فکر کریں، سارے طبقات جتنے بھی ہیں، سارے مذاہب جتنے بھی ہیں، وہ سب ہمارے ہیں، ان کا فکر کریں، ان کو بہت توجہ دیں. کہیں اپنی ذات کو اگر لے کر چلے نقصان اٹھائیں گے. میری منت ہے، درخواست ہے، یہ جو ہم 12 لڈو کا عمل رکھا ہے کہ آپ 12 لڈو لے آئیں، ایک لڈو مراد کا خود لے لیں، 11 رکھ دیں، جو رکھے ایک لڈو اس میں سے لے، نیت کرے کہ اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں آ کے 12 لڈو رکھوں گا. یہ بہت طاقتور عمل ہے اور اس میں بہت قبولیت ہوتی ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں. اور اس عمل میں بھی دیکھیں کہ لانے والے نے ایک لڈو لیا، باقی 11 تو لوگوں کے لیے چھوڑ گیا. ہمارے دلوں میں لوگوں کی، اپنے معاشرے، اپنے گھر، اپنے نسلوں کی کے لیے فکر مندی کا جذبہ ہو، فکر مندی کا جذبہ. اور یہ لڈو والا عمل بہت کامیاب عمل ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ اس کی مراد پوری کرتا ہے، اللہ اس کے مسئلے حل کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے. یہی حال ہمارے میٹھے چاولوں کا ہے، جو چاول آپ کو ملے ہیں، پوری محنت کر کے ہمارے خدمت والے مخلصین آپ کے لیے محنت کر کے میٹھے چاول بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کتنی محنت کر کے. اور یاد رکھیے گا، عمل کے بعد ہماری مستند کتابوں میں میٹھی چیز تقسیم کرنا ہے. جو اور یہ چاول وہ چاول ہیں، اس کے ایک ایک چاول میں رحمت ہے، راحت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، راحت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، راحت ہے اور شفا ہے. ایک ایک چاول کے دانے پہ آپ قدردان ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں، یہ جو کاغذ کے لفافے، ان کو خراب نہ کریں، ان کو واپس آ کے دیا کریں، یہ پھر استعمال ہوں، بڑے مضبوط لفافے ہیں. ایک ایک پہ رحمت ہے، راحت ہے، شفا ہے، جتنی ہماری مزاج میں قدردانی ہوگی. اور یہ جو نقش یار، نقش یار غار، یار مزار اور دریائے نیل کا نقش ہے، یہ وہ طاقتور تعویذ ہے. اس کے میں نے فائدے سنے، باہرلے ملک والوں سے سنے، جو انہوں نے مجھے بتائے، ایسے ایسے فائدے بتائے کہ اس نقش کے کمالات اور برکات کیا ہیں. یہ تو رزق اور دولت اور برکت کے سمندر اور دریائے نیل بہا دیتے ہیں، دریائے نیل بہا دیتے ہیں. میری درخواست یہی ہے. اور اسی طرح اپنے مرحومین کو نہ بھولیں، اپنے زندوں کو نہ بھولیں، اپنی نسلوں کو نہ بھولیں. اور جو سخی ہوتا ہے نا، کبھی اکیلا نہیں آتا. یہی بات میں نے بیرون ملک والوں سے کہی، اپنی انٹرنیشنل کانفرنس میں کہی. میں نے کہا اپنی کانفرنس والوں کو، میں نے کہا آپ بہت آئے ہیں، بہت آئے ہیں، لیکن سخی کبھی اکیلا نہیں چلتا. سخی ہمیشہ، سخی ہمیشہ انسانیت طبقات کو لے کے چلتا ہے. پورا ہفتہ محنت کریں تسبیح خانے کی ترتیب کی، پورا ہفتہ محنت کریں، اور پورا ہفتہ محنت کر کے، پورا ہفتہ محنت کر کے، پورا ہفتہ، پورا ہفتہ لوگوں کو لایا کریں اللہ کی محبت میں. مجمع اکٹھا کرنا مطلوب نہیں ہے، کسی کے کان میں خیر پہنچ جائے، اور کسی کے مشکل حل ہو جائے، اور کسی کی پریشانی دور ہو جائے، اور کسی کی ناکامی ختم ہو جائے. اللہ پاک ہماری مشکل حل کرے گا اور پریشانی دور کرے گا، انشاءاللہ کریں گے نا. اور دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا تھا، تسبیح خانے کی اور میری اور سارے نظام کی حفاظت کی، اور فتنوں سے حفاظت کے لیے، دجالی فتنوں سے حفاظت کے لیے، حامیم لا ینصرون، یا حفیظ و یا سلام، جانی ساروں کا عمل ہے. اور یہ دجالی فتنوں کو توڑنے کے لیے رمضان میں بہت سے لوگوں نے اپنے ذمے اعمال لیے تھے. آپ نے دن رات دعائیں اعمال خاص عمل کہ یہ جو فتنے اٹھے ہیں اور ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اور ان فتنوں کو اور فتنہ پرداز کو ختم کرنے کے لیے یہ آپ نے جو اعمال کیے تھے. یاد رکھیے گا ایک بات بتا دوں, فتنوں کو اللہ کے نام کی طاقتیں کھا جائیں گے. اور مخلصین کی دعائیں اور جو فتنوں کے دوران تماشا دیکھتے رہے وہ بھی نہیں بچ سکیں گے. یاد رکھیے گا یہ دعائیں طاقتور, پوری دنیا لگی ہوئی ہے اعمال پہ. مجھے آ کے وہاں کانفرنس میں دنیا کے لوگوں نے بتایا, یاد رکھیے گا انبیاء پہ فتنے اٹھے, اہل بیت صحابہ پہ, بڑی بڑی ہستیوں پہ. فتنوں کے لیے اپنے اعمال مضبوط کریں, اپنی دعاؤں میں طاقت پیدا کریں اور کوئی عمل چوک نہ جائے اور اپنے عمل میں تاثیر, طاقت, توجہ بڑھائیں بڑھائیں بڑھائیں. توجہ کریں گے نا, بہت زیادہ بڑھائیں, بہت زیادہ انشاءاللہ کوشش کریں اور اس پہ محنت کریں, توجہ کریں. یہ فتنے چار دن کے لیے ہیں, ان کا حصہ بننے والے, فتنوں کا حصہ بننے والے عبرت کا نشان, اور فتنوں کو ختم کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا نشان ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کے نظام میں بڑی طاقت ہے, اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے اور اللہ کے نام میں بڑی قوت ہے. اپکری چینل کو اور اپکری میگزین کو بہت زیادہ پھیلائیں تاکہ انسانیت کو خیر پہنچے, برکت ہو, رحمت ہو. یا کہارو 120 دن کا چلہ 8 مئی بروز جمعرات سے آپ اپنے مقام پر شروع کریں گے, ہر سال ہوتا ہے. یا کہارو کا 120 دن کا چلہ, 120 دن کا چلہ 8 مئی جمعرات سے شروع ہوگا. اپنے مقام پر رہتے ہوئے اس کو توجہ دیں. اسم اعظم کا روحانی دم 11 مئی اتوار بعد نماز فجر ہوگا. کتنے, کون سی مئی؟ 11 مئی اتوار بعد نماز فجر ہوگا. اس کو توجہ سے کریں گے اور دم کا ڈبہ پہلے لے لیا کریں, اس میں بہت برکت والی چیزیں ہوتی ہیں پہلے سے. اور سوشل میڈیا پہ بعض اوقات میری نسبتیں جوڑ کے میں ان کا رشتہ دار ہوں, کلاس فیلو ہوں, فلاں ہوں, بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کیا جاتا ہے, متاثر. تو اس کی احتیاط بھی کریں اور اطلاع بھی کریں. اور ہر جمعرات کو حضرت علی کی دعا کی کتاب ساتھ لائیں. بعض لوگ گھر رکھ کے آتے ہیں, یہاں سے نہیں لیتے ہیں, ایسا نہ کریں. دوسروں کا حق نہ ماریں, یہ انسانیت کا اور لوگوں کا حق ہے, یہ اس حق کو حق رہنے دیں. اپکری جادوئی لائبریری کا بہت زیادہ وزٹ کریں. بعض لوگ ناواقفیت پہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کو جادو جنات نظر بد نہیں ہوتا, ہمیں ہوتا ہے. تو ہم نے انگریزوں کی بے شمار کتابیں جمع کی ہیں کہ جادو جنات نظر بد سے ان کے ساتھ کیا حال ہوا, بے شمار کتابیں جمع کی ہیں. اس کتاب کو, ان کتابوں کو پڑھا کریں, بڑے مغالطے دور ہوتے ہیں. ہر جمعرات روحانی چلہ ہوتا ہے, 3 دن یہاں گزارے. جمعرات عصر سے اتوار ظہر تک دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے. اور اپنی موٹر سائیکل اور گاڑیوں کا خیال کریں کہ گلی کے اندر نہ لائیں. مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں, سب کے حقوق ہیں, کوشش کریں کہ گلیوں کے اندر نہ لائیں. اور اپنے ہی جوتے استعمال کریں, بعض اوقات کسی کے جوتوں سے بھی کوئی روگ بہت زیادہ لگ جاتے ہیں, اپنے ہی جوتے استعمال کریں. اللہ پاک ہمیں خیریں اور برکتیں بانٹنے والا بنائے. آج 2 نکاح بھی ہیں, بہترین نکاح وہ ہے, اس کا نکاح کا کھانا کہ نکاح سادہ ہو اور جو شادی کا کھانا ہو اس میں غریبوں کو شامل کیا جائے, غریبوں کو شامل کیا جائے. اور رمضان میں جو حضرات کھجور کی گٹھلیاں ساتھ لے کر گئے تھے وہ واپس کر رہے, کہیں نقصان نہ ہو جائے. کھجور کی گٹھلی ایک بھی اپنے پاس نہ رکھیں, وہ واپس کریں, کہیں نقصان نہ ہو. صرف تھیلی ساتھ لے جانی تھی, گٹھلیاں ساتھ نہیں لے جانی تھی. اب بیٹھ کے बहुत तवज्जो और ध्यान से, बहुत यकसुई और कैफियतों से थैली का अमल करेंगे। इसका तरीका मैं आपकी खिदमत में पहले अर्ज कर दूं, थैली का तरीका। इसमें आपको इल्म है कि आज ये पहली जुमेरात है, अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियों और अपने मसाइल का तसव्वुर करते हुए इस थैली के अमल को तवज्जो से करेंगे। दरूद पाक हम पढ़ चुके हैं, इसको खोल के अपने सामने रखेंगे, थैली को खोल के अपने सामने रखेंगे और बहुत ताकतवर जज्बों के साथ बैठ के पढ़ेंगे, या लतीफो, या बहुत जज्बों के साथ, बहुत तवज्जो के साथ, बहुत ध्यान के साथ हम या लतीफो या वदूदो बैठ के पढ़ेंगे, और बहुत तवज्जो के साथ बैठ के पढ़ेंगे और अपने मसाइल परेशानियों का, और फिर इस थैली पे दम करेंगे, फिर पढ़ेंगे, इसी तरह 7 बार पढ़ेंगे। कितनी बार? कितनी बार? बहुत तवज्जो से, जितना जज्बा, जितना दर्द, सर झुका के जितना खलूस होगा उतना उस करीम की बारगाह में इंशाल्लाह कबूलियत होगी। और घर जाके 1 तस्बीह या 11 तस्बीह इंशाल्लाह इसकी जरूर पढ़ेंगे किसी वक्त थैली के ऊपर। और इसकी जो अलविदाई दुआ होगी इस अमल की, वो 10 मुहर्रम को होगी। और आप दिल खोल कर लंगर लाएं और अपने हाथों से खुद तकसीम करें। इसके लिए 10 मुहर्रम को अलविदाई दुआ होगी इंशाल्लाह ताला। और फिर अमल के बाद 11 जुमेरातों के बाद चुटकी चुटकी तवे पर जलाएंगे, या लतीफ़ो या वदूद 11 बार या 1 तस्बीह पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मसले हल होंगे। आए फिर तवज्जो से अमल शुरू करते हैं, ध्यान से अमल शुरू करते हैं। थैली आपके सामने है और बहुत ध्यान, बहुत तवज्जो से या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो, तवज्जो से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, लाइटें बंद कर दें। या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो, अगली बार पढ़ने से पहले एक बात गौर से सुन ले। अल्लाह को जज्बे पसंद है, अल्लाह की नजर जज्बों पे रहती है। अगर जज्बों से ना पढ़ा तो फायदा नहीं होगा, अल्लाह की नजर जज्बों पे है, अल्लाह की नजर जज्बों पे है, पूरे जज्बे, पूरी कैफियत। ڈوب کر پڑھیں اور باواز بلند پڑھیں، اللہ کی نظر اس پہ ہوتی ہے۔ یا لطیف و یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو، اب یہ آخری دفعہ پڑھ رہے ہیں، توجہ سے پڑھیں، بہت دھیان سے پڑھیں، آخری دفعہ پڑھ رہے ہیں، توجہ سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، اپنی مشکلوں پریشانیوں کا تصور کر کے پڑھیں۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذل قوت المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا کرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار. یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار، یا رب العالمین. اللهم واقعتن کواقعت الولید، اے اللہ تو ہماری حاضری قبول فرما، اللہ تو ہماری حاضری قبول فرما، ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ اگر ذلت کے عرشوں سے فیصلے ہو چکے ہیں محض اپنے فضل سے اور محض اپنے کرم سے، محض اپنی عطا اور شفقت سے، اے سخی آقا عزتوں میں بدل دے، برکتوں میں بدل دے، خیروں میں بدل دے، عافیتوں میں بدل دے. اے سخی آقا ہماری دنیا آخرت بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ضرورتیں غیب سے پوری کر دے، اور دنیا آخرت کی مشکلیں حل کر دے، اور ناکامیاں دور کر دے. اے اللہ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، ہماری ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما. مخلوق کا محتاج نہ بنا، بے بسی سے بچا، پریشانی سے بچا، مشکلوں سے بچا، سختیوں سے بچا. راستے بند ہو گئے ہیں کھول دے، گلیاں بند ہیں کھول دے، رزق بند ہے کھول دے. اے اللہ آنکھیں بند ہیں کھول دے، دل بند ہے کھول دے. اپنے کاروبار میں برکت دے دے، ہمارے کاروبار میں برکت دے دے، رزق کی برکت دے، صحت کی برکت دے، برکت میں برکت دے، راحت میں راحت دے، عافیت عطا فرما. اے اللہ جو پوری دنیا کی ابکری کانفرنس میں تیرے بندے اور بندیاں آئے ان سب کی حاضری قبول فرما، اور جو مجبوری کی وجہ سے نہیں آئے اے اللہ ان کو آئندہ سال حاضری کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ فتنوں سے خود ہی نمٹ لے، ہم تو کمزور ہیں، تو فتنوں کو ختم کر دے اور ان کا انجام بدتر کر دے. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو شہنشاہ بھی ہے، کریم بھی ہے، تو سخی بھی ہے، لجپال بھی ہے. یا اللہ آمین کہنے والوں کو دے دے، سننے والوں کو دے دے. آمین کہنے والوں کو دے دے، آمین سننے والوں کو دے دے، آمین پکارنے والوں کو دے دے. سب کی خیر کر دے، سب کا بھلا کر دے، دنیا آخرت کی برکتیں دے دے اور دنیا آخرت کی خیریں دے دے. نسلوں کو آباد کر دے، شاد کر دے، بامرات کر دے. شادیوں میں تاخیر کے غیب سے اسباب بنا دے. گھر ٹوٹے ہیں جوڑ دے، دل ٹوٹے ہیں جوڑ دے، جذبے ٹوٹے ہیں جوڑ دے. ہماری ہر حاجت کو غیب سے پورا فرما، ہماری ہر مشکل کو دور فرما. اے اللہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آج آیا ہو یا دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو، اس کے دل کی آنسیں لے کر بیٹھا ہو، امیدیں لے کر بیٹھا ہو، برکتیں لے کر بیٹھا ہو، عافیتیں لے کر بیٹھا ہو. اے اللہ ان سب کی امیدیں پوری کر دے، آنسیں پوری کر دے، امیدیں پوری کر دے، آنسیں پوری کر دے. محرومی سے بچا، محرومی سے بچا، محرومی سے بچا، شکاوت سے بچا. عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما. محرومی سے بچا، شکاوت سے بچا، عافیت عطا فرما. دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے. یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہہ رہے عطا کر دے، چاہ رہے عطا کر دے، دعاؤں کے لیے لکھا انہیں دے دے، جنہوں نے مانگا انہیں دے دے، جنہوں نے سوچا انہیں دے دے، جو جذبے لے کر آئے ان کے جذبوں کے مطابق عطا فرما. ہاتھ اٹھے کشکول ہیں یا کشکول بھر دے, ہاتھ اٹھے کشکول ہیں یا کشکول بھر دے, کشکول خالی نہ رکھ, اپنی رحمت سے دے دے, اپنے فضل سے دے دے, اپنے کرم سے دے دے. بس من مانگے عطا فرما, نس من مانگے عطا فرما, بس من مانگے عطا فرما. ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے. یا اللہ جنہوں نے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے جو جو عمل اپنے ذمے لگائے ہیں ان کے جذبوں کو قبول فرما, ان کے جذبوں کو قبول فرما, انہیں مزید ہمت اور توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے میرا مولا, دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے, دعاؤں میں بڑی طاقت ہے, دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے. اے اللہ ان فتنوں کو ختم کر دے اور ان کو مزید توفیق دے دے. وہ جس عمل میں لگے ہیں اس عمل کو بہت تکمیل سے کریں, بہت توجہ سے کریں, بہت طاقت سے کریں. اے اللہ تو غیب سے تسبیح خانی کی خیر کر دے, بھلا کر دے, رحمت کر دے. بس یہ لنگر یوں ہی چلتے رہیں, یہ خیریں یوں ہی بٹتی رہیں, یہ برکتیں یوں ہی چلتی رہیں, آباد رہیں, شاد رہیں, با مراد رہیں, با مراد رہیں, با مراد رہیں. کوئی بے مراد نہ جائے, سب کی جھولیاں بھر دے, سب کو خیریں دے دے. آمین, 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 آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه وأزواجه وبناته وأهل بيته وإطراته وأهل بيته وإطراته وأهل بيته وإطراته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.